11 अप्रैल 1967 पहले पेज के मध्यम जो बात चल रही थी, बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हो और जो भी देहधारी धर्म गुरु है वो सब देह अभिमानी बनाते हो। वो तो और उल्टा उल्टा ज्ञान बना बता देते हैं। तो ये बात ही आकर के समझाते हैं कि तुम बच्चे हो, वेद के बाप के बच्चे हो, वेद का बाप तुम, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है और तुम वेद के बच्चे बिंदु आत्मा, हृदय के बच्चे अपन को देह समझते हैं, देह अभिमानी होते हैं, उनका बाप भी देह अभिमानी होता है। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं कि रूह क्या है और देह क्या है। वेद का तुमको वर्षा तुमको वेद के बाप से मिलता है और हद का वर्षा हद के बाप से मिलता है। ये वेद का नाटक है ना, ये 5000 वर्ष का नाटक अभी पूरा हो गया और ये नाटक अथवा ड्रामा कहो ये कोई ने बनाया नहीं है, बना बनाया है, अनादि ड्रामा है। कोई तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ तो बताना पड़ेगा कि तुम अनादि है, इनका आदि मध्यंत नहीं होता। पुराना सो नया होता है, नया सो पुराना बनता है। तो ये पाठ बच्चों को तो पक्का हो गया। तुम जानते हो कि नई दुनिया कब बनती है और पुरानी दुनिया कब होती है। कलयुग है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। और ये बातें भी कोई कोई बुद्धि में पूरी से बैठती नहीं है, बातें सारी बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तो जानते हो कि अभी नाटक पूरा होता है फिर भी होगा, जो शुरू में पार्ट बजाया था वही फिर भी होगा। बरोबर हमारा 84 अनों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाबा हमको ले जाने के लिए आया हुआ है, बाप गाइड भी है, तुम सब पंडे हो। वो पंडे लोग होते हैं यात्रियों को तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं ना, वो तो जिस्मानी पंडे होते हैं, जिस्म को खींच करके ले जाते हैं क्या, देह को खींच के ले जाते हैं, देहधारियों को ले जाते हैं। तो कोई को ये नहीं कहते हो कि चलो तुमको तीर्थ यात्रा करा लो, क्या करते हो उनकी आत्मा खींचते हो, ऐसा बेहद का ज्ञान सुनाते हो जो उनकी आत्मा खींचने के लिए मजबूर हो जाती। तो रूह की यात्रा कराने वाले हो, रूह यात्रा करके बाप के पास पहुंचने लगती है। तुम कोई जिस्म को नहीं खींचते हो, वो पंडे क्या करते हैं अपनी जिस्मानी खर्चे के पूर्ति के लिए जिस्मधारियों को खींच करके ले जाते हैं। तुम कोई सी ये नहीं कहते हो कि चलो तुमको तीर्थ यात्रा करा लो, उनकी आत्मा में स्वतः ही खींच हो जाती है। इस बात की कि हम बाप से मिले, तो वो जिस्मानी पंजे हैं, तुम रूहानी पंजे हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव आया हुआ है। पांडव सेना हो ना, ग्यारह अप्रैल 67 की वाणी का दूसरा दिन, तो तुम सेना भी हो और पंडे भी हो, रूहानी सेना के वॉलेंटियर हो, रूहानी यात्रा पर ले जाने वाली पंडे हो, और तुम्हारी यह है पांडव गवर्नमेंट। परंतु दुनिया को इस गवर्नमेंट का पता नहीं है, ये गुप्त गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट और यादव गवर्नमेंट, ये सब यहां की बातें हैं, बाहर की दुनिया में भी हैं। कौरव गवर्नमेंट का राज्य चल रहा है, आई समाज होते हैं, वो प्रजा परस्त होते हैं, प्रजा के प्रति उनका मोह बहुत होता है। उन्हें तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए, धर्म को नहीं मानते, कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। क्या अपेक्षा है? हमें वोट दे दो तो किसी भी धर्म को फॉलो करो। बाहर की दुनिया में भी ऐसे है और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। किसकी गवर्नमेंट है? कौरवों की गवर्नमेंट है। कौओं की तरह रब करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं। हम त्रिमूर्ति शिव भगवान है, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता, न नया धर्म स्थापन होता, न नई राजधानी स्थापन होती। जैसे बाहर की गवर्नमेंट है, नेताएं हैं, भाषणबाजी करते हैं चले जाते हैं, ये भी भाषणबाजी करते हैं चले जाते हैं, कौओं की कौआ रेरा हो गया, जैसे कौए इकट्ठे हो जाते हैं, काव काव करते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तुम पांडव गवर्नमेंट हो, तुम कौआ रेरा मचाने वाले नहीं हो, क्या कौओं की तरह गंद करने वाले भी हैं? वो कहां ले जाते हैं? वो जिस्मानी तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं, चलो दिखाए तुमको सुखधाम शांति धाम, तुम रूहानी यात्रा कराते हो। शास्त्रों में आया हुआ भी है, पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट, यादव गवर्नमेंट क्या करते भाई? ये इस समय की बातें हैं, इस समय की संगम, ये तीन गवर्नमेंट तब होती है जब महावारी महाभारत लड़ाई शुरू होनी होती है। अभी ये लड़ाई सिर पर खड़ी है, क्या ये इस समय की बात है? और अनेकों धर्म है और दुनिया भी तमो प्रधान है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन कौन से धर्म का होता है? कौन से धर्म का होता है? आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन होता है, तब कोई दूसरे धर्म नहीं होते हैं। अभी तमो प्रधानता है तो अनेक धर्मों का फाउंडेशन लगा हुआ है। पहले पहले सतयुग में थोड़े ही इतने ढेर सारे मनुष्य होंगे, बाद में जब और धर्म आते हैं तो वृद्धि को पाते हैं। पहले थे सतो प्रधान, अभी है तमो प्रधान, ये बातें किसी को भी पता नहीं। चाहे बाहर की दुनिया की बात हो और चाहे अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो, पहले थोड़े होते हैं फिर तमो प्रधान बनते हैं तो उनकी संख्या बहुत हो जाती है, वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, स्टूडेंट्स में कोई अच्छे समझदार होते हैं, अच्छी धारणाएं करते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराने का शौक होता है, अच्छे से धारण करते हैं, कोई नीचे धारण करते हैं, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाली चाहिए, जो ज्ञान की बातों को रिफाइन करके समझाए। पुरानी पुरानी तरीके से पुरानी पुरानी बातें ही सुनाते रहते हैं, उसको रिफाइन ज्ञान थोड़े कहेंगे। तो पहले पहले तो कोई को यही बताना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक एक पाप। एक है वेद का बाप पारलौकिक बाप, और दूसरा है हद का बाप लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। भारत स्वर्ग था, आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी फिर नरक बन गया। तो बाबा कौन से स्वर्ग की याद दिलाते हैं? 5000 वर्ष पहले, पहले मैंने संगम युगी स्वर्ग की बात बताते हैं, जो चढ़ती कला गई है, जब से कृष्ण का जन्म होगा तो उनके पावन लक्षण के बाद उतरती कला शुरू हो जाएगी। वो लक्ष्य नहीं देते, उससे भी मुख्य लक्ष्य कौन सा है? कराती थे कल्याण कल पांतकारी, ऐसा जो पाठ। तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है उनको, जो स्वर्ग के रचयिता है। भारत स्वर्ग था, जो अभी नरक बना है इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अभी विचारी होती है, ये क्यों लगा दिया है? ज्ञान भी पहले पहले अभिविचारी होता है और बाद में ज्ञान भी विविचारी। अनेकों की बातें सुनते हैं, अनेकों की बातें धारण कर लेते हैं तो ज्ञान भी विचारी हो जाता है। पहले पहले एक से सुनते हैं, जब नए नए ज्ञान में आते हैं, चाहे एडवांस में चाहे बेसिक में, पहले पहले एक की बातें धारण करते हैं और बाद में अनेक मतें सुनते सुनते विविचारी बन जाते हैं। ज्ञान भी विविचारी और आप विविचारी होता है। तो अभी फिर बाबा कहते हैं कि एक से ही सुनो, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। ये अविविचारी ज्ञान है, और कोई से जो सुनेंगे वो सब झूठ और इविल बातें ही बता देंगे। बाप अभी तुमको सच्चा सुना करके सच्चे बन का मालिक बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें सुनते सुनते तुम कनिष्ठ बन गए, कनिष्ठ माना नींद का। इतने ढेर मनुष्य हैं वो सारा झूठ ही झूठ सुनते रहते हैं। पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? परमात्मा तरफ जाती है। तुम उनको कितना भी समझाओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है, और खास संगम युग में तो जरूर एक व्यापी है, वो इस बुद्धि में नहीं रहते। वो फिर भी कहेंगे क्या मेरे में है, तेरे में है, मैं भी ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, आत्मा ही तीनों पार्ट बजाती है, ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती, विष्णु का भी पार्ट बजाती, शंकर का भी पार्ट बजाती, हम सब ब्रह्मा विष्णु शंकर नंबर वार, तो सत्यमूर्ति शिव हो गए। सबसे बड़ा झूठ बताते हैं गीता का भगवान कृष्ण। क्या गीता का भगवान कृष्ण है? और ये कब से झूठ झूठ बताते चले आ रहे हैं? द्वैत कब से शुरू हुआ? ये क्यों स्थापना के साथ साथ ये भी बोलने से विनाश वाला प्रवृत्ति हुई, यज्ञ के आदि से ही द्वैत भी घुस गया। प्रजापिता अलग हो गया और ब्रह्मा अलग हो गया, सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई, और चंद्रमा की रहवरी में चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी सारे ही इकट्ठे हो गए। यहां तक कि जो गीता माता थी वो भी किसके कंट्रोल में चली गई? ब्रह्मा के कंट्रोल में चली गई। गीता माता के दिल पर भी ब्रह्मा की छाप पड़ गई, कृष्ण की छाप पड़ गई। दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना, तो गीता माता के दिल पर भी कृष्ण बच्चे की छाप पड़ गई। बाप भूल गया, भले बाप चला जाए कोई परवाह नहीं, किसका साथ दिया है? ब्रह्मा का साथ दिया। ब्रह्मा का साथ दिया तो दूसरे धर्म की आत्माओं ने भी किसका साथ दिया? जब जगत की अम्मा ही ब्रह्मा का साथ देती है तो सारी ही मनुष्य आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की किसका साथ देती है? ब्रह्मा का साथ देती है, जगदम्बा का साथ देती है। तो उस समय से जब गीता के ऊपर कृष्ण की छाप लग जाती है, कृष्ण गीता का भगवान हो जाता है, तो डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हुआ कराती में, वो क्षणभंगुर होता है या लंबे समय का होता है? क्षणभंगुर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई उस समय डुप्लीकेट स्वर्ग है प्राची में। बात अटकती हो पुरुषार्थी जीवन में, काल अस्थि बुला रहे। अरे काल अस्थि में जाएं, कहीं काल आ जाए तो
गोबर कहता है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन।
बाबा कहते हैं सब पुरुष दुर्योधन दुशासन।
कन्या माता ने पवित्र है,
कन्या माताएं सब नंबर वार पवित्र है,
लेकिन भगवान आता है।
सूपन का पूतना कोई कोई है, सब नहीं है
सब।
और पुरुष
सब दुर्योधन,
1 to 12, A to Z सब पुरुष दुर्योधन,
लेकिन भगवान आता है पुरुष का में। पुरुष जैसा बनने का कारण क्या है?
बाप पतित से घृणा करता है
या पतितों को आकर के पावन बनाता है, प्यार करता है, पतितों को पावन बनाता है, आता है उनके नजदीक आता है तो उनसे घृणा करता है या प्यार करता है? प्यार करता है, पतितों से घृणा नहीं करता। और सन्यासी, सन्यासी क्या करते हैं? पतितों से घृणा करते हैं। तो बाप में अंतर है, बाप सच्ची बात कहने वाला है तो पतितों से घृणा नहीं करता लेकिन झूठ से घृणा करता है। बाप को सच्चाई प्रिय है तो पतित बच्चे अप्रिय नहीं है, लेकिन जो पतित बच्चों में सच्चे सच्चे बच्चे हैं वो बाप को प्रिय है। जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बाप को देते हैं, इसलिए बोला है कि अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। माना देवान के कारण अपना पूरा सच्चा पोता मेल बाप के सामने देते नहीं है। एक है जो 100% अपना पूरा सच्चा पोता मेल बाप के सामने रख देता है। तो ऐसे सच्चे बच्चे बाप को प्रिय है। बाप का बच्चा होगा तो अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, समय संबंध संपर्कियों का सारा पोता मेल देता होगा। तो क्या बात क्लियर हुई? कन्याएं माताएं दुर्योधन दुशासन सुपनखा सबको नहीं कहा और पुरुष सबको दुर्योधन दुशासन कहा, फिर भी पुरुष तन में परमात्मा क्यों आता है? किस लिए आता है? है क्या कारण बताया? पुरुष तन दुर्योधन दुशासन है, फिर भी उस दुर्योधन दुशासन में परमात्मा क्यों आता है? अरे पवित्र कन्या के, पवित्र ऋषि मुनि के तन में क्यों नहीं आता? ठीक है, पवित्र कन्याओं के तन में, पवित्र ऋषि मुनि के तन में आना चाहिए, उनके तन में नहीं आता। पतित तन में आता है, क्या खासियत देखी? वो खासियत फिर भूल गई।
सच्चे सच्चा पोता मुझे
है,
प्रवृत्ति मार्ग वाला
है। नहीं, प्रवृत्ति मार्ग वाले तो बहुत है हिन्दुस्तान में, तो सब ढेरों प्रवृत्ति मार्ग वाले।
पोता मेल भेजता
सच्चाई,
सच्चाई
बाप सत्ययुग स्थापन करने वाला है। बाप को सच्चा पातशाह कहा जाता है, सच्चा बाप है, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। जो सच्चे बच्चे होते हैं वो बाप को अति प्रिय है, सबसे ज्यादा सच्चाई प्रिय है। इसलिए भले कितना भी पतित हो लेकिन क्या हो, है बाप के प्रति सच्चा हो। दुनिया के सामने, दुनिया की नजरों में भले झूठा हो लेकिन बाप के सामने सच्चा हो, तो बाप को बहुत प्रिय। और
बच्चों के रूप में 4.5 लाख जन्म लेने वाले हैं ना, वो सभी चंद्रवंश से आए तो आती है।
बिल्कुल चंद्रवंश से आएंगे,
पूरा 4.5 लाख
बिल्कुल ज्ञान चंद्रमा की और संतान होंगे, ज्ञान चंद्रमा के सच्चे बच्चे होंगे, उनमें इस्लामियों वाला बच्चा कोई नहीं होगा। इस्लामियों की औलाद कोई नहीं होगा, सब मम्मा बाबा को प्यार करने वाले होंगे। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती, ये दो ही उनकी बुद्धि में समाये हुए होंगे। और कोई इस्लाम धर्म का, मुस्लिम धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का मुखिया उनकी बुद्धि में नहीं समाया हुआ होगा, वो 4.5 लाख सत्यु की आदि में और राधा कृष्ण को जैसे बच्चों के साथ जन्म लेंगे। और
అడగండిపేట
బాబా కైతే బెటర్ బాబా కైతే ముజే సర్వసేబుల్ బచ్చే బహు ప్రియ బాబా కౌన్ సే బచ్చో యాద్ కర్తే सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनको याद नहीं करते हैं। तो कैसे याद करते होंगे? आंखों से याद करते होंगे है? इन दो नेत्रों से याद करते होंगे, कैसे याद करते हैं है? अरे तीसरे नेत्र से याद करते हैं ना, तो तीसरे नेत्र की दृष्टि लेनी है वो ऊंची है या इन्हें विनाशी आंखों की दृष्टि लेनी है, है? ये विनाशी आंखों की जो दृष्टि है वो तो अल्पकाल की है, और जो सर्वसेवन बच्चे हैं उनको तो बाप सदाकाल याद करते रहते हैं। तो सदाकाल की तीसरे नेत्र की दृष्टि जिन बच्चों को मिलेगी वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये इन आंखों से 2-4 सेकंड बैठ करके याद दृष्टि ले ली वो ज्यादा फायदे में रहेंगे हैं? ये दृष्टि तो उनको दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि सुबह से शाम तक अपने धंधे धोरी में लगे रहते हैं, सारा दिन याद ही नहीं करते, तो इनकी आंखों को इनकी दृष्टि को पकड़ करके बैठ करके इनको याद दिलाओ। ये दृष्टि कोई जरूरी नहीं है उतनी, लेकिन बाप की जो कृपा दृष्टि कही जाती है वो है सर्वसेवल बच्चों को मिलने वाली। और
अष्टदेव के बारे में प्रश्न है। अष्टदेव है ही, चार पैर भाई बहन है।
भाई बहन नहीं है अष्टदेव,
चार पैर
नहीं, ये बात बुद्धि में गलत बैठ गई। अष्टदेव जो है वो रुद्रमाला के मणके हैं या विजयमाला के मणके हैं? हैं? रुद्रमाला आपस में भाई भाइयों की माला है या भाई बहनों की माला है? हैं? भाई भाइयों की माला है, तो वहाँ भाई बहन की बात नहीं है। हाँ, स्त्री चोला और पुरुष चोले के हिसाब से कहा जा सकता है, हैं? तो जोड़े होने की बात नहीं है। क्या जोड़े होने की बात नहीं है, और वो अष्टदेव हैं। अष्टदेव वो हैं जो नंबरवार, जिनमें फिनिशिंग आठ नौ धर्मों के अंतर से कम पड़ जाती है, क्योंकि आखिरी जन्म में वो बाप से बिछुड़ जाते हैं और कोई न कोई धर्म में प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए वो फिनिशिंग में कमी पड़ जाती है और उनके नंबर बन जाते हैं। तो चार जोड़े हैं, तो चलो भाई बहन के रूप में चार जोड़े दैहिक रूप में बन लिए। उसके बाद
उसमें छह है, बाकी छह है उसमें इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन
छह,
बाकी छह है
छह मान।
अष्टदेव में दो पहले बाप और आने वाले माता,
दो पहले
हाँ।
दो पहले मान, एक बाप असल सूर्यवंशी और दूसरा जो आखिर में जाकर के अंतिम जन्म में जाके चंद्रवंश से प्रभावित हो जाता है। माना थोड़ा सा स्लाइट अंतर 84 जन्मों में से एक जन्म का अंतर चंद्रवंश का प्रभाव पड़ जाता। तो यूं कहें कि वो जो अंतर पड़ता है वो अंतर फेंसिंग के हिसाब से उसको चंद्रवंशी में ले जाता। ऐसे तो 83 जन्म के पक्के हैं। क्या है पक्के? 83 जन्म के अष्टदेव कौन से धर्म के पक्के हैं? सूर्यवंशी हैं, लेकिन आखिरी जन्म में हार खा जाते हैं। हाँ, दो तो हो गए उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी,
बाकी छह।
हाँ, बाकी रह गए छह। तो छह जो है वो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन,
सन्यासी, सिख,
मुस्लिम और सिख। सिख धर्म में प्रभावित हो जाते हैं आखिरी जन्म। हाँ,
उसमें कौन कौन भाई बहन थे वो पहले उसमें, इसलिए ये बाकी छह में कोई भाई नहीं कोई बहन।
जो लेफ्ट साइड के हैं वो सब पावरफुल हैं इसलिए भाई हैं, और जो राइट साइड के हैं वो सब बहने हैं। भारतीय धर्म, बौद्धि धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये सब ऐसे धर्म हैं जो बाईं ओर के धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं।
धर्म आते रहते हैं ना बाबा, आठ धर्म। वो धर्म पिता वाले हैं ना,
दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को छोड़कर दूसरे धर्म के जो धर्म पिता हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले, माने प्रवृत्ति में पक्के नहीं रहते। आज एक प्रवृत्ति है तो कल दूसरी प्रवृत्ति है। कोई भी जो उस धर्म में कन्वर्ट होंगे उनके अंदर संघ का रंग आ जाएगा।
पलट दी थी,
बदल दिया। हाँ। और
नव धर्मों के धर्म पिता नव नारायण के रूप में प्रवेश करते हैं ना।
नव धर्मों के नव धर्म पिताएं
नारायण का
धर्म पिताएं नहीं है, वो धर्म की माताएं हैं। क्या?
आधर्मों की माताएं।
हाँ,
नास्तिक
धर्म पिताएं जो हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं पिता जो है वो माता के दिल और दिमाग पे छा जाता है, दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाता है, तो इसलिए वो आधार है। जैसे बीज है पिता और बीज धरणी में प्रवेश कर जाता है, तो वो जो बीज धरणी में प्रवेश कर जाता है उस बीज को धारण करने वाली धरणी माता कही जाती है। तो वो धर्म की माताएं हैं जो शरीरधारी देखने में आते हैं।
वो सभी नारायण बनने वाले हैं।
नारायण बनने वाले हैं नौ, एक संगम युग का और आठ सतयुग के।
आस्तिक धर्म वाले आई ना, वो भी प्रवेश करके धर्म स्थापन करते हैं ना।
जो नास्तिक धर्म का है वो भी प्रवेश करता है, लेकिन वो मानता नहीं है किसी को।
मानता नहीं बाबा, आधार मूर्ति कहाँ से आती?
वो भी यहीं से आता है,
संगम युग से।
हाँ जी, क्योंकि संगम युग में नास्तिक भी है बहुत तेरे, नास्तिक है, और सतयुग में भी वो नास्तिक धर्म की आत्माएं प्रजा वर्ग में आती है। ऐसे नहीं कि प्रजा नहीं बनती है, आखिरी जन्म में प्रजा वर्ग में आएंगी, लेकिन वो किसी को मानेंगी नहीं, और वही आत्माएं कलयुग के अंत में जब आती है तो तो उनमें वो लेनिन स्टालिन को प्रवेश करते हैं। राजा ही नहीं पाते क्योंकि राजाई का वर्षा बाप से मिलता है, न वो निराकार बाप को मानते न वो साकार बाप को मानते। निराकार शिव को नहीं मानते इसलिए स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता, स्वस्थिति का वर्षा नहीं मिलता, और वो साकार जो एडम आदम है आदिदेव है उसको भी नहीं मानते, इसलिए उनको जो विकारी सृष्टि है द्वापर कलयुग की उसमें भी राजाई का वर्षा नहीं मिलता, वो प्रजा के प्रजा में ही रह जाते, प्रजातंत्र राज्य को ही ऊंचा समझते हैं। फिर आपका प्रश्न क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं?
ऐसे
बाप आता है बड़े से बड़े नास्तिक में, बनता नास्तिक में बनता है बड़े से बड़े आस्तिक,
बड़े से बड़ा आस्तिक बनाने के लिए।
बाप आता है कामी काटे में
है बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए,
फिर नास्तिक कैसे बन कब बने हैं?
वो तो सबका बाप है ना, कोई ऐसा मनुष्य है जिसका बाप न हो? वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, देवात्माओं का भी बाप है तो राक्षसों का भी, राक्षसों का भी बाप, सूर्यवंशियों का भी बाप है तो नास्तिक वंशियों का भी बाप है, इसलिए उसको तो साहब का बाप बन करके पाठ बजाना है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। क्यों? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, इसलिए सबका बाप चाहिए सबको सुधारने के लिए।
भक्ति मार्ग में कन्या परमेश्वरी कन्या कुमारी, कन्या परमेश्वरी कन्या कुमारी दोनों को पूजा योगी बंदी है ना, वो दोनों
वैष्णवी देव का गायन हुआ जी, एक को लक्ष्मी कहते हैं एक को महालक्ष्मी कहते हैं, एक को ब्राह्मण कहते हैं एक को महाब्राह्मण कहते हैं, क्या ऐसे ही लक्ष्मी और महालक्ष्मी, नारायण और महानारायण, तो जो दो का गायन है दो देवियों का उसमें एक का मुरली में नाम बोला है कुंवारी कन्या और दूसरी का नाम बोला है क्या बोला है अधर कुमारी, दोनों की पूजा होती है, अधर कुमारी माता जो माताएं बन जाती है, माताएं बनती है भिकारी बन जाती है फिर बाप की बन जाती है तो निर्विकारी बन जाती है, जिनके लिए बाबा कहते हैं कि माताओं को भी मैं कन्या बना देता हूं, क्योंकि माताएं जब ज्ञान ले लेती हैं ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है प्रैक्टिकल जीवन में उतर आती है तो कन्या बन जाती है, तो वो पूजी जाती है उनकी वो पवित्रता पूजी जाती है। पतित बनने के बाद पावन बनना मुश्किल होता है या पावन को पावन बनना मुश्किल होता है, ज्यादा पुरुषार्थी कौन हुआ?
पतित से पावन बनने वाले
जो पतित बन चुके हैं उनको पावन बनना बहुत मुश्किल होता है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं ही पवित्र उनको अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है तो उनको पवित्र रहना कोई बड़ी बात है? नहीं है। जो है ही देवता उस देवता को देवता बनने में कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो देवता से नीचे उतर करके राक्षस बन गया उसको राक्षस से देवता बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए विष्णु देवता कहा जाता है, विष्णु नव विषय काल, कोई जन्म में उस वैष्णव देवी में विषय विकार का विविचार का अंश मात्र नहीं आने पाता, उसका नाम ही है पार्वती। जन्म जन्म लगी रगड़े हमारी, बड़ों शंभु न तो रहूं कुमारी, मेरी जन्म जन्म की ये प्रतिज्ञा है क्या कि या तो मैं शंभु को वरण करूंगी, शंभु को पति बनाऊंगी, या तो मैं कुंवारी रहूंगी। तो हर जन्म जन्म का एक पति हुआ या अनेक पति हुए? एक पति हो गया। तो जिसका जन्म जन्म का एक पति होगा उसमें जन्म जन्म की प्योरिटी की पावर समाई हुई है, इसलिए उस आत्मा को एडवांस ज्ञान में शुरू में आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? हैं? हाँ, ये नियम बना हुआ है, उनको एडवांस ज्ञान में बाद में आना है, क्योंकि वो तो है ही पवित्र। आपका तो गांव का ही नाम है तिरुपति है, दो पत्नियों की कथा प्रसिद्ध है, है?
तीन पत्नी,
हाँ तीसरी भी होती है, वो माया बेटी होती
है,
वो बेटी होती है, पत्नी नहीं होती,
बीवी ना अच्छा
है।
बाबा खाड़ा से नया फिर है, खाड़ा से नया फिर है,
कालस्थी क्यों बार बार बुलाते हो? ओ कालस्थी से तो सबको काल से डर लगता है। तिरुपति में आओ, तिरुपति में सारी दुनिया तिरुपति में आती है, आप कालस्थी में बुलाते हैं। चलो तिरुपति में कितनी भीड़ लगती है, शंकर को काल हस्ती में बुलाओगे तो महाकाल का रूप धारण कर लेगा, फिर सारा खेल खलास हो जाएगा।
बाहर
लगता है कोई आत्मा सर के ऊपर बैठी होगी, हैं? हैं? सर झटका के भगा दो,
हैं? ये परेशान है बाबा,
स्वयं स्थिति की शान में नहीं रहती इसलिए परेशान होती है, स्वयं स्थिति में नहीं रहेगी तो दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, दूसरी आत्मा कब प्रवेश करती है? जो अपनी आत्मा के चिंतन में नहीं रहता,
दूसरी आत्मा है,
ज्यादा देहभान में रहता है तो उसके ऊपर दूसरी आत्मा सवार हो जाती है, तो अपनी आत्मा की याद में रहा करो तो दूसरी आत्मा नहीं आएगी। शीशे में देखा है काली बिंदी दिखाई पड़ती है, है? सफेद बिंदी को याद किया करो, अच्छा है,
राम लक्ष्मण सीता तीनों 14 साल अरण्यवास किया ना, उसका यादगार क्या? चंदन
यादगार क्या? अयोध्या में कब आए? रावण को वध करने के बाद 14 साल के बाद अयोध्या में आ गए। अयोध्या माना
युद्ध नहीं,
जहाँ युद्ध नहीं होता। और अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो युद्ध हो रहा है। जब युद्ध होना बंद हो जाए, नई दुनिया की सौगात मिल जाए, तो समझ लो 14 साल हमारे पूरे हुए।
स्वप्न में कन्वर्ट होता बाबा मेरे अपना।
स्वप्न में बाबा,
स्वप्न में बाबा आता है और स्वप्न में बाबा आता है और जागते में भूत आता है।
स्वप्न में बाबा वस्ताड़ो
सपने में निद्रा में बाबा आता है और जागृत अवस्था में देवान रहता है, इसलिए भूत आता है। नहीं बाबा क्या स्वप्न में आता है ना, तो सो जाती है तो उस समय तो आत्मा सो जाती है ना, तो इसलिए उस समय बाबा याद आता है। और जब जगते हैं तो देवान आ जाता है, तो देवान के ऊपर आत्मा सवार हो जाती है। और बोलो बोलो तेलुगु में बोलो। तेलुगु नु चप्पू अरे घर जाने दो, रुको मत।
टीचर्स वेरी गुड यार, ढूंढना
ध्यान दो जा
वेरी गुड फॉर टीचर्स इनको बाबा
हाथ देना ना बाबा। बाबा पढ़ेंगे सुनो, क्या करना है? मुरली क्या पढ़ते हैं? टीवी देखते हैं, टेप रिकॉर्ड देखना तो चाहिए। सुनना
क्या
पढ़े? पढ़े नहीं ना बोले क्या पढ़ते हैं बाबा के? मुरली क्या पढ़ ले सकते हैं? रेडियो तो भी, टीवी तो भी देखना बाबा को।
समझा
बाबा? चलो बाबा चलू लेदु कदा, टीवी చూడాల్సింది
కదా। अभी तो पढ़ने की और लिखने की दरकार ही नहीं, और किसी से सुनने की भी दरकार नहीं। अभी तो एक से सुनना है, तो एक से सुनाई हुई बात को तो टेप रिकॉर्ड और VCD और DVD और टीवी अच्छा सुनाता, तो वही सुना करो।
वो सुना
करो, वही सुना करो।
आए दूसरे आदमी बाबा पूछे को बोले तो पूछे
तो बाबा को क्या पूछो? तुम तो मुरली पढ़ी है, मुरली में तो बताया है कि सन्मुख सुना सो फर्स्ट क्लास, और कागज में पढ़ा क्लास, और जो टेप रिकॉर्ड में सुना वो सेकंड क्लास। तुम सेकंड क्लास मान लो, फर्स्ट क्लास माल ले लिया आज, और क्या चाहिए? ठीक है।
వైష్ణవి అంటే ముగ్గురు అమ్మలు కదా, మహాలక్ష్మి, మహా సరస్వతి, మహాకాళి. ఆ తీన్ వైష్ణవి అంటే ముగ్గురు అమ్మలు మూలపుటమ్మ అంటారు, మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, మహా సరస్వతి. వాళ్ళు సాకారంలో
వైష్ణవి దేవి మాతాయి,
तीन माताएं हैं। तीन माताएं कौन कौन? महाकाली है, महागौरी है ना, जब महाकाली है तो महागौरी भी है, फिर कोई बीच वाली भी है, है सरस्वती है।
చెప్తుంటారు చూడ బాబా, మహాగౌరీ మహాకాళి మధ్యలో సరస్వతి అని చెప్తున్నారు. మరి సరస్వతి ఎవరు మనం తెలుసుకుందా, మహాగౌరీ ఎవరు రాబోయే రాబోయే, మరి ఈమె మహాకాళి ఎవరు జగదంబ. బాబా అన్ని విడదీసినప్పుడు
జగదంబ మహాకాళి బి और महागौरी अलग और फिर बीच में सरस्वती है, तीन देवियां हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती। और
बाबा ये माता ने बता रही है गायत्री माता को पांच सिर दिखाए, इसलिए
गायत्री को
पांच सिर
दिखाते हैं।
नहीं पांच बोल रहे हैं,
तीन सिर
ये बोल रहे हैं, लेकिन नाम क्या है?
गायत्री।
तीन का गायन है, गाय माना गायन, त्री माने तीन, तीन देवियों का गायन है वो गायत्री। हाँ जी,
चित्र में है पांच।
अरे चित्र तो ढेर के ढेर मनुष्यों ने बनाए दिए, कोई को पांच पत्नियां रही होंगी तो उन्होंने पांच बना दिए है। द्रौपदी वालों की तो बुद्धि बहुत चलनी चाहिए है।
शंकर तो पांच से देता है ना,
शंकर को जो पांच सिर दिखाए हैं वो ब्रह्मा के ही पांच मुख हैं, पंचानन जिसको कहते हैं, वो कोई दूसरे नहीं है। जो ब्रह्मा है सो विष्णु बनता है, वही ब्रह्मा बीच में प्रवेश करता है तो शंकर का रूप है, शंकर माना मिक्स।
రాముల వారి మీద జంగిల్ లవ్ కుసిన యుద్ధం చేస్తారు కదా, ఇద్దరు లవ్ కుసిన అంటే రాముల వారి పైన, అప్పుడు ఈ అంటే గాయమే అంటే గుర్రము జంగిల్మే అడిగి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేస్తారు కదా, ఆ లవ్ కుసి ఎవరు యుద్ధం చేసేది?
युद्ध किया, हाँ
लवकुश,
लवकुश ने युद्ध किया।
लवकुश कौन है?
कौन है? तो जो इस्लामी है, जो इस्लामी बच्चा है, राम के तीन भाई है ना, उनमें से जो दो भाई हैं, उनमें एक है इस्लामी का बीज और एक है क्रिश्चियन का बीज, एक प्यार का पार्ट बजाता है, भले देह का प्यार करता है, क्या देह का प्यार करता है लेकिन प्यार का पार्ट बजाता है, इसलिए वो है लव। लव माना प्यार का पार्ट बजाने वाला, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता ज्यादा लेकिन प्यार का पार्ट बहुत बजाता है। और दूसरा है कुश, कुश माने कांटे जैसी एक घास होती है, उसका नाम होता है कुश, कुश माना कांटा, क्या वो कांटा जो है वो एटम बम बनाता है, एटम बम बना के सारी दुनिया को दुख देता है, तो कांटे का नाम रख दिया उसका लव। और कुश, कुश माना काफी समझ। दो बीज उपात्माएं हैं और जो माँ है उसका काम है माता का, माता जो है वो बच्चों की परवरिश करेगी कि बाप की परवरिश करेगी? माँ जो है वो बाप की परवरिश करेगी, बाप की पालना करेगी या बच्चों की पालना करेगी? बच्चों की पालना करेगी। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा दादा लेखराज ने बच्चों की पालना की या पति बाप की पालना की? है? बच्चों की पालना की। और अभी अंत में भी जो जगदम्बा है वो जगदम्बा पहले इस्लामी बौद्धि इस्लामी और क्रिश्चियन जो लव और कुश बच्चे हैं उनकी पालना करेगी या बाप की पालना करेगी? बाप को प्यार करेगी। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो माँ बच्चों को प्यार करती है या पति को प्यार करती है? बच्चों को प्यार करती है। वही परंपरा चली आ रही है। तुम जाओ वानप्रस्थी हो जाओ, जाओ जंगल में चले जाओ, ना कोई
रावण में लक्ष्मी कौशल्या सुमित्रा कहते तीन में मिलकर राम जी को क्यों अपने वनवास में भेजा? वनवास 14 साल किस लिए भेजा? कौशल्या सुमित्रा कहते तीन जन मिलकर राम बाप को जंगल को भेजाया ना?
कौशल्या ने थोड़े भेजा,
कौशल्या ने कही थे
है? कई कई जिसको कई कई पति थे उसने भेजा होगा है? जिसको एक हो वो थोड़ी भेजेगा, जिसकी बुद्धि बिखरी हुई होगी, जिसको एक बाप दूसरा न कोई, एक राम बाप में जिसकी बुद्धि लगी हुई हो वो काय के लिए जंगल में भेजेगा? जंगल में कौन भेजता है? है असुरों का संहार करने के लिए जंगल में भेजा जाता है। तो कौशल्या ने भेजा क्या? फिर कई कई ने भेजा, निमित्त कह के ही बनती है और मंथरा दासी बनती है। तो दास दासी बनने वाली आत्माएं हैं वो जंगल में भेजती है। हो गया? हाँ हाँ बोलो।
महाभारत ద్రౌపదే రాత్రిలో శవాల దిన పోతాడని భీముడు నీ చూపిస్తాడు కృష్ణుడు కాకులాకాశి కాపులా పెడతారు లోపలికి రాని బాబు శవాల దిన పోతాడు
द्रौपदी क्या करती?
संसार में लाश है ना, लाश खाने के लिए चलती। वो भीम भीमसेन है ना, वो बाघ में अंदर जाने की ना मानती द्रौपदी।
अरे वो कथाएं तो सब एक ही हैं, चाहे हरिश्चंद्र राजा की कथा समझ लो और चाहे भीमसेन की और द्रौपदी की कथा समझ लो, हैं तो सारी एक ही कथाएं हैं। हरिश्चंद्र की जो कथा है उसमें तारामती शमशान घाट में जाने के लिए वो रोकता है कि तेरे को हम बच्चे को दफन नहीं करने देंगे, ऐसे ही भीमसेन उसको रोक देता है। सारी कथाएं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बुद्धि से लिख दी है। हाँ, और तुम टीवी में देखते हो उनको, बाबा कहते हैं ये मनुष्यों ने सब किस कथा कहानियां लिखी है, इन कथा कहानियों में बुद्धि जाएगी तो बुद्धि सारी बह जाएगी इधर उधर है। बुद्धि जानी चाहिए किसमें? जो बाबा ने शास्त्रों का सार बताया है। क्या बाहर की दुनिया के शास्त्रों का सार बताया मुरली में और मुरली का सार बताया एडवांस ज्ञान में, तो बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? है एडवांस ज्ञान में रहनी चाहिए, मुरली के महावाक्यों में बुद्धि रहनी चाहिए। इधर उधर चारों तरफ टीवी वीवी के चक्कर में फंसा होगा सारी बुद्धि बह जाएगी। और बस हो गया।